अक्षु अक्षित की ओर मुड़ते, बाय डैड हाथ हिलाते, संधु भी हाथ हिलाते, बाय मामू बोलती है, बाय बड़े तो बड़े आज तो छोटे भी, तुम भी अक्षु की ओर देखते, रहो यहाँ अच्छे से, और हाथ जोड़कर सबको बाय बोलकर अक्षित वहां से चला जाता है, सब आवाज देते हुए, आराम से जाना अक्षित, और सब हंसते हैं। ऋषि जी और अंकित जी मुंह से फूंकते हुए बैठते जाते हैं। नीलिमा, कितना मुश्किल है संध्या अक्षित दोनों को संभालना। रंजन, मनाना ऐसे ही वो करती है, दोनों ड्रामेबाज हैं। तभी नीतू जी बोली, मुंह फुलाकर चला गया, हम सब तो पीछे ही पड़ गए थे। तभी मंजू जी नीतू जी की ओर गईं और कंधे पर हाथ रखते बोली, ज्यादा मुंह ना लटकाओ, कहीं ना जाएगा, और कहकर गया है नहीं आऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, भागा आएगा, रह सकता है क्या तुम्हारे हाथ के बने पकवान खाने से। एक मिनट, आज क्या जरूरत थी अक्षित के लिए पकौड़े बनाने की, हिलता तो वो वैसे भी नहीं है, और कुछ खाने को मिल जाए तब तो वैसे भी ना हिले। रंजन, वो तो हम सब जानते हैं, और अभी अभी डेमो देखा है, और लाओ और लाओ। नीलिमा, हम धक्का देकर न निकालते तो जाता क्या यहाँ से, घंटे भर और न हिलता। सही कहा मासी आपने। नीतू जी सबकी ओर देखते, ऐसे कैसे ना बनाती, माना कि वापस जल्दी जाना अक्षित का जरूरी था, पर घर का दामाद है, ऐसे कैसे मैं अपने अक्षित को कुछ भी बिना खाए पिए जाने देती। ऋषि जी, हाँ वो भी है, हमारा भी फर्ज बनता है। अंकित जी, तो निभा लिया फर्ज, खिला दिए ना पकौड़े। नीतू जी, खिला तो दिए, पर गया कैसे है देखा ना। मंजू जी, क्यों परेशान हो रही हो, सब ठीक है, कहाँ वो नाराज रहता है, और अभी घर गया है, संध्या संभाल लेगी, और तुमने इतने अच्छे पकौड़े खिलाए हैं, उनकी डकार गुस्सा छू मंत्र कर देगी। हंसते हुए, ये सुनकर नीतू जी भी हंस पड़ती हैं। रंजन, मैंने संध्या को मैसेज कर दिया है कि अक्षित यहाँ से निकल गया है। मंजू जी, बस आज अक्षित से संध्या अच्छे से बात कर ले, आर या पार हो जाए, और अच्छा है कि हम तीनों यहाँ आ गए। अंकित जी, संध्या तो नहीं मान रही थी, पर मंजू जी ने डांटा तब हमें आने दिया, और हम अक्षु को भी ले आए। नीलिमा, मैंने ही बोला था मासी को, और संध्या से भी बात की, आप सब वहां होते तो संध्या अक्षित पर कम ध्यान देती, और आप सबके पीछे पीछे लगी रहती। मंजू जी, ऐसे ही करती है वो, क्या दोनों ऐसा करते हैं, बड़े हैं फिर भी अक्षु के साथ बच्चे बन जाते हैं, खेलना कूदना आधी रात तक लगा रहता है, इसलिए मैं अक्षु पे साथ लाई, और नीतू तुमने भी बोला तो संध्या मान गई, वरना वो अक्षु के पीछे कभी यहाँ कभी वहाँ करती ही रहती है। तभी रंजन बोला, एक मिनट आंटी जी, अक्षित संध्या बड़े कब हुए। ये सुनकर सब हंस पड़े। नीतू जी, बचपना अभी भी बहुत है दोनों में, और हम सब देखो फिर नई उम्मीद लगाए बैठे हैं संध्या अक्षित से। मंजू जी हाथ जोड़ते हुए, अगर उम्मीद जायज़ है तो पूरी होने से, और हम सबकी उम्मीद लगाने में कोई हर्ज नहीं। तभी नीलिमा दोनों के बीच आई और दोनों के कंधे पर बाहें डालते हुए, संध्या है ना, विश्वास है ना उस पर, संभाल लेगी, और तीनों गले मिलती हैं। तभी अक्षु बोला, नानी कम मिर्ची वाले पकौड़े दो ना, मुझे भूख लगी है, डैड को खिलाए, मुझे नहीं। रंजन, माँ लो, बेक अक्षित ना सही, लिटिल अक्षित है यहाँ, करो खातिरदारी नवाबजादे की। नीतू जी, हाँ तो अभी जाकर सबके लिए पकौड़े बनाती हूँ और फिर खाना। मंजू जी, चलो मैं भी आती हूँ, यहीं रुकना है आज तो, काम भी करूँगी। और नीतू जी, नीलू और मंजू जी किचन की ओर चली गईं। रंजन ऋषि जी और अंकित जी के पास सोफे पर बैठ जाता है, बच्चे भी वहीं खेल रहे होते हैं। अक्षित का घर, आज तो हद ही हो गई, सबके सब एक ही लाइन पर अड़े थे, घर जाओ, लो आ गया घर, कहते अक्षित ने बैल बजाई। अब ये डोर क्यों नहीं खोल रही है, अब क्या यहाँ से भी जाऊँ, कहते अक्षित ने लगातार बैल बजाई। तभी संध्या डोर खोल देती है, क्या है अक्षित, खराब करोगे क्या। हाँ तो खोल देती तो, अक्षित बोलते संध्या की तरफ देखता है कि नजर संध्या पर ही चमसी जाती है। संध्या ने ब्लैक साड़ी, कंधे पर पूरा पल्लू गिराया हुआ, रेड फुल नट की बाजू वाला ब्लाउज पहना होता है, जिससे कलाई पर चूड़ीदार सा बना हुआ होता है, बाल खुले, गले में सिर्फ मंगलसूत्र, कानों में मीडियम साइज के इयररिंग्स, मांग में सिंदूर, माथे पर लाल छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर हल्की हल्की लिपस्टिक, और उस पर संध्या की प्यारी सी मुस्कान, और आंखों में चमक, मतलब हमेशा की तरह मैडम गजब ढा रही होती हैं, जिसे देख अक्षित दरवाजे की दीवार पर गिरते हुए अपना हाथ अपने सीने पर रखकर बोला, हाय। संध्या अपने बाल कान के पीछे ले जाते हुए, क्या हुआ। लो, जुर्म करने की साजिश करने वाला खुद कहता है कि क्या हुआ, इतने भी जानकर अनजान न बनो मोहतरमा, देखो हमारा हाल आपकी इस अदा को देखकर ही बेहाल हो गया है, दिल पर सीधे प्यार भरे तीर चला रही हैं आप, अब हम घायल ना होंगे तो भला क्या होंगे, खुद को तैयार होकर आईने में देखा भी था या नहीं, हुस्न की मलिका जीने भी ना दे और मरने भी, वो कत्ल कर रही हैं आप। अक्षित मुस्कुराते हुए संध्या की तरफ देखते हुए बोला, हो गया, कहते संध्या ने अक्षित की टाई पकड़ी और अंदर की तरफ खींचा और दरवाजा बंद करते हुए बोली, तुम्हारी हाय और हाल दोनों से वाकिफ हूँ मैं। रेडी हुई नहीं कि तुम्हारे अंदर का शायर जाग जाता है और फिर हाल बेहाल, जान अनजान, हुस्न घायल जैसे भारी भारी बर्ड। संध्या दरवाजा बंद करके मुड़ते हंसते हुए बोली। तभी अक्षित ने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रख लिए। संध्या अक्षित के हाथों के बीच में थी। अब शायर जगाती भी तो तुम हो ना, वैसे सच में बहुत ही प्यारी लग रही हो, बोलते अक्षित ने अपने हाथ से संध्या के बाल माथे से हटाए और संध्या की आंख से काजल लेते हुए कान के पीछे काला टीका लगाया, किसी की नजर ना लगे। तभी संध्या ने अक्षित के गले में अपनी बाहें डाली। अगर मैं चाहूं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी नजर लगे तो? अक्षित ने दरवाजे से हाथ हटाए और संध्या की कमर पर कसकर संध्या को अपने करीब किया। नजरों से होकर दिल में उतरे हो, नजर और दिल दोनों से बच पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। ये दिल धड़कता भी एक नाम से है और नजरों में भी एक ही चेहरा रखता है और वो है संध्या, सिर्फ संध्या। संध्या का माथा चूमते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। जितनी दफा तुझे देखा है उतनी दफा तुझे चाहा है, सांसों में बढ़ी रहती बेकरारी है, दिल को बस अब आदत तेरी है। तू ही तो यारा मेरा इश्क है, बेहद वाला इश्क है, इश्क है मेरा बेहद वाला इश्क है। तभी संध्या इधर उधर देखते बोली, अक्षित। अक्षित संध्या की ओर एकटक देखते हुए, संध्या तुम्हें फ्लैटर करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जो सवरू और तुम गए काम से। हंसते हुए, अक्षित अच्छा वैसे तो तुम मुझे हर लुक में औसम लगती हो, हाँ थोड़ा साड़ी में ज्यादा, यू नो वाई? क्रमशः।